नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा, भारत यूक्रेन रूस संघर्ष समाप्त करने में वैश्विक राजनयिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दोनों देशों के बीच वर्तमान रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में नक्सल रोधी अभियानों की कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दुग्ध उत्पादों के पैकेट से A1 और A2 के दावे हटाने का आदेश दिया। और भारतीय महिला पहलवानों ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप का पहला टीम खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष समाप्त करने में वैश्विक राजनयिक प्रयासों के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री ज़ेलेंस्की का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की पहली यात्रा के बाद आया है। श्री ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
If we are speaking about global role, because you have global influence, very big country, very big population, and that's why, and very big influence on Russian economy. Today you have it, and it's true, because really a lot of export possibilities for Russia closed, but India is open.
वार्ता के दौरान श्री मोदी ने श्री ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों को बिना समय गवाए एक साथ बैठकर संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही शांति का पक्षधर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत की मेजबानी में ग्लोबल साउथ देशों के दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के आयोजन का भी प्रस्ताव दिया। पहला यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन जून में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें 90 से अधिक देशों और वैश्विक संस्थानों ने भाग लिया था। भारत ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वह सभी पक्षों के साथ बातचीत करता रहेगा। इस यात्रा से लगभग 6 सप्ताह पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी शिखर वार्ता की थी। प्रधानमंत्री ने देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत यूक्रेन की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।
ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और दो कदम आगे चलेगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत ने शांति स्थापित करने के आवश्यक प्रयासों की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। हाल ही में रूस यात्रा पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी युद्ध से नहीं हो सकता है।
समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
यूक्रेन के कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा की और उन्होंने हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान 4 समझौते भी हुए। इस बीच प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत यूक्रेन मैत्री संबंधों में गहनता के लिए इस महान देश में गए थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई। भारत सर्वदा शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन सरकार और वहां के लोगों को आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रात वाशिंगटन में पेंटागन में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने पिछले वर्ष अपनाए गए भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग रूपरेखा में चिन्हित क्षेत्रों में भारत में दोनों देशों द्वारा मिलकर तैयार किया जाने वाला रक्षा उत्पादों को रेखांकित किया। एक रिपोर्ट।
दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की। वाशिंगटन में 22 अगस्त को हुए इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ काम करने का अवसर मिलेगा, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में भी सुगमता आएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका ने दोनों देशों में संपर्क अधिकारियों की तैनाती से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत किया है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने क्वाड की पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र जागरूकता कार्यक्रम में हुई प्रगति और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की। दोनों देशों ने संयुक्त समुद्री बलों में जारी भारत की भागीदारी का भी स्वागत किया। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
नेपाल बस दुर्घटना में महाराष्ट्र के मारे गए 24 लोगों के शवों को आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लाया जाएगा। वायुसेना के विमान से उन्हें महाराष्ट्र के नाशिक में उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के तनहू जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दूतावास प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज राजधानी रायपुर में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में होने वाली अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही विभिन्न कार्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह आज छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने के लिए भी एक बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कल रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार के सिलसिले में भी एक समीक्षा बैठक लेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों को दूध और दुग्ध उत्पादों पैकेटों से A1 और A2 के बारे में सभी दावे तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों पर भी लागू होगा। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालक A1 और A2 के वर्गीकरण के अंतर्गत दूध और घी, मक्खन तथा दही जैसे दुग्ध उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि दूध में A1 और A2 का वर्गीकरण आवश्यक रूप से प्रोटीन के संबंध में होना चाहिए, इसीलिए दूध वसा उत्पादों के संबंध में A2 का दावा भ्रामक है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों से कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति स्थापित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय सलाहकार समिति की 44वीं बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमला वर्धन राव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। उन्होंने कहा कि ये उपभोक्ताओं को भोजन में कीटनाशक अवशेषों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से भी बचाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस पर देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। श्री शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के वायदे और अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के फैसले का समर्थन करती है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 5,66,000 युवाओं सहित 23,27,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 185 अंकों के साथ पहला टीम खिताब जीत लिया है। जापान 146 अंकों के साथ दूसरे और कजाकिस्तान 79 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत की ओर से काजल स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पांचवी महिला पहलवान बनी। श्रुतिका पाटिल ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और राज बाला ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। मुस्कान ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया। इस बीच भारत सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। नेपाल के काठमांडू में कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने मालदीव को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ग्रुप बी में भारत शीर्ष पर पहुंच गया। सेमीफाइनल में सोमवार को भारत का मुकाबला ग्रुप ए के उपविजेता बांग्लादेश से होगा। उधर ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेंगलुरु एफसी ने चौथी क्वार्टर फाइनल में केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हरा दिया। इससे पहले पूर्व चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट्स ने तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब एफसी को 6-5 से हराया। शिलांग में सोमवार को पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मुकाबला शिलांग जोंग एफसी से और मंगलवार को दूसरे सेमीफाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट का सामना बेंगलुरु एफसी से होगा।
मौसम विभाग ने रविवार को त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले तीन दिन के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान केरल, माहे, तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया है। इस बीच दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस में सिपाहियों के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। आज, कल और इस महीने की 30 और 31 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए राज्य भर के 67 जिलों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उम्मीदवारों को अपना प्रवेश पत्र दिखाकर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान कर रही है। परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
धन्यवाद फरहत। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले बच्चों पर राष्ट्रीय सहारा ने मेरा क्या कसूर शीर्षक से प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भावनात्मक तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, युद्ध में मारे गए मासूमों की याद दिला रहे हैं ये खिलौने। वहीं राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को प्रकाशित किया है कि शांति का संदेश लेकर आया हूं, युद्ध को बताया बच्चों के लिए विनाशकारी। रक्षा उद्योग को मजबूती देने में भारत और अमरीका के बीच हुआ अहम समझौता। दोनों देशों ने एसओएसए अधिकारियों की तैनाती पर हस्ताक्षर किए, दैनिक जागरण की सुर्खी है। नेपाल में बस हादसे में 27 यात्रियों की मौत की खबर आज सभी अखबारों में है। पत्र लिखते हैं, पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। चंद्रयान 3 की वर्षगांठ पर इसरो ने बताई आगामी योजना। 2027 में लॉन्चिंग, सबसे सस्ते चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने लेकर आएगा चंद्रयान 4, दैनिक भास्कर की खबर है। हर रविवार जल्दी होगी मेट्रो की गुड मॉर्निंग। 4 कॉरिडोर पर कल सुबह 8 बजे के बजाय 6 बजे और 3 अन्य कॉरिडोर पर 7 बजे मिलेगी ट्रेन। अमर उजाला ने ये खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। जनसत्ता ने रत्नागिरी में पारंपरिक बैल दौड़ कार्यक्रम नांगरानी उत्सव के दौरान अपने बैलों के साथ दौड़ते हुए किसान की संघर्षमयी तस्वीर प्रकाशित की है। अब आवाज सुनकर एआई पहचान लेगी बीमारी, हिंदुस्तान की सुर्खी है।
धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, भारत यूक्रेन रूस संघर्ष समाप्त करने के वैश्विक राजनयिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमरीका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने दोनों देशों के बीच वर्तमान रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में नक्सल रोधी अभियानों की कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दुग्ध उत्पादों के पैकेट से A1 और A2 के दावे हटाने का आदेश दिया। और भारतीय महिला पहलवानों ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप का पहला टीम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।